प्रशासक अध्याय 11। गिलादवासी यिफ्ता एक बहादुर योद्धा था, किंतु वह एक वैश्या का पुत्र था। उसके पिता का नाम गिलाद था। गिलाद की पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए। जब ये पुत्र बड़े हुए, तब उन्होंने उसे यह कहते हुए घर से निकाल दिया, तुम तो पराई स्त्री से जन्मे हो, इस कारण हमारे पिता की मीरास में तुम्हारा कोई भाग ना होगा। तब यिफ्ता अपने भाइयों से दूर भागकर तोब देश में रहने लगा। वहां निकम्मे खराब लोग उसके साथी बनते चले गए जो उसके साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद अम्मोन वंशजों ने इसराइलियों से युद्ध छेड़ दिया। जब अम्मोन वंशज इसराइल से युद्ध कर रहे थे, गिलाद के अगुए लोग तोब देश से यिफ्ता को लेने जा पहुंचे। उन्होंने यिफ्ता से विनती की, आकर हमारे सेनापति का कार्यभार संभाल लो कि हम अमोनियों से युद्ध कर सकें। गिलाद के अगुओं को यिफ्ता ने उत्तर दिया, क्या आप ही नहीं थे जिन्होंने घृणा करके मुझे मेरे पिता के घर से बाहर निकाल दिया था? अब जब आप पर संकट आ पड़ा है तो आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? गिलाद के अगुओं ने यिफ्ता को उत्तर दिया, तुम्हारे पास हमारे लौटने का कारण सिर्फ यह है कि तुम हमारे साथ चलो और अम्मोन वंशजों से युद्ध कर सारे गिलाद वासियों के प्रधान बन जाओ। इस पर यिफ्ता ने गिलाद के अगुओं से प्रश्न किया, अर्थात यदि आप मुझे अम्मोन वंशजों से युद्ध करने के उद्देश्य से वापस ले जाते हैं और यहावे उन्हें मेरे अधीन कर देते हैं तो मैं आपका प्रधान बन जाऊंगा। गिलाद के पुरनियों ने यिफ्ता को उत्तर दिया, स्वयं यहावे हमारे बीच गवाह है, निश्चय ही हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुमने अभी कहा है। सो यिफ्ता गिलाद के पुरनियों के साथ चला गया। प्रजाजनों ने उसे अपने ऊपर अधिनायक एवं प्रधान नियुक्त कर दिया। यिफ्ता ने मिस्पा में यहावे के सामने पूरी वाचा दोहरा दी। यिफ्ता ने तब अम्मोन वंशजों के राजा को इस संदेश के साथ दूत भेज दिए, मैंने आपकी ऐसी क्या हानि कर दी है जिसके निमित्त आप हमारे देश से युद्ध करने आ गए हैं? अम्मोन वंशजों के राजा ने यिफ्ता के दूतों को उत्तर दिया, मिस्र से निकलकर आते हुए इसराइल ने आर्नोन से लेकर यब्बोक तथा यर्दन तक की भूमि पर कब्जा कर लिया था, इसलिए अब सही होगा कि शांतिपूर्वक यह भूमि हमें लौटा दी जाए। यिफ्ता ने अम्मोन वंशजों के राजा के लिए दोबारा दूत भेजे। उन्होंने राजा से यों कहने को आदेश दिया, यिफ्ता का संदेश यह है, इसराइल ने ना तो मोआब की भूमि पर कब्जा किया है और ना ही अम्मोन वंशजों की, क्योंकि जब इसराइल मिस्र देश से निकला, वह निर्जन प्रदेश में से लाल सागर पहुंचा और वहां से कादेश को। वहां पहुंचकर इसराइल ने एदोम के राजा के लिए दूतों से यह संदेश भेजा था, कृपा कर हमें आपके देश में से होकर आगे जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु एदोम के राजा ने इस विनती की ओर तनिक भी ध्यान ना दिया। उन्होंने यही विनती मोआब के राजा से भी की, किंतु वह भी इसके लिए राजी ना हुआ। इस कारण इसराइल कादेश में ही रुक गया। तब उन्होंने निर्जन प्रदेश में से यात्रा की, इसके लिए उन्हें एदोम और मोआब देशों में प्रवेश ना करते हुए घूमकर आगे बढ़ना पड़ा और वे मोआब देश के पूर्व में पहुंच गए। उन्होंने आर्नोन के दूसरी ओर छावनी डाल दी और मोआब की सारी सीमा में प्रवेश किया ही नहीं, आर्नोन मोआब की सीमा पर था। इसके बाद इसराइल ने अमोरियों के राजा सीहोन को, जो हेशबोन से शासन कर रहे थे, दूतों द्वारा यह संदेश भेजा, कृपया हमें अपने देश में से होकर हमारे देश में पहुंचने की आज्ञा दीजिए। किंतु सीहोन ने इसराइल पर भरोसा ही ना किया कि वह उसके देश की सीमा से होकर निकल जाएगा। इस कारण सीहोन ने अपनी सेना तैयार की, यहत्स में छावनी डाल दी और इसराइल से युद्ध करने लगा। यहावे इसराइल के परमेश्वर ने सीहोन तथा उसकी सारी सेना को इसराइल के अधीन कर दिया। उन्होंने उन्हें हरा दिया। फलस्वरूप उस देश के निवासी तथा सारे अमोरी देश इसराइल के अधिकार में आ गए। आर्नोन से लेकर यब्बोक तक तथा निर्जन प्रदेश से लेकर यर्दन तक का सारा क्षेत्र उनका हो गया। अब आप ही बताइए, जब यहावे इसराइल के परमेश्वर ने ही अमोरियों को अपनी प्रजा इसराइल के सामने से हटा दिया है, क्या आपका इस पर कोई अधिकार रह जाता है? क्या आप स्वयं उस पर अधिकार नहीं किए हुए हैं जो आपने अपने देवता खेमोश से पाया है? इसलिए इसी प्रकार जो जगह यहावे हमारे परमेश्वर द्वारा हमारे सामने खाली करवाई गई है, हम उस पर अधिकार बनाए रखेंगे। क्या आप जिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक से बढ़कर है? क्या उसने कभी भी इसराइल का सामना करने का साहस किया था, अथवा क्या उसने कभी भी इसराइल से युद्ध किया? जब इसराइल 300 वर्षों से हेशबोन और उसके गांवों में, अरोवर तथा उसके गांवों में तथा आर्नोन के तटवर्ती नगरों में रहता रहा, आपने उन्हें उसी समय वापस कब्जा करने की कोशिश क्यों नहीं की? इन बातों के प्रकाश में मैंने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया है, बल्कि आप ही मुझसे युद्ध करने की भूल कर रहे हैं। यहावे जो न्याय अध्यक्ष है, वही आज इसराइल वंशजों तथा अम्मोन वंशजों के बीच न्याय करें। किंतु अम्मोन वंशजों के राजा ने यिफ्ता द्वारा भेजे संदेश को ना माना। इसी समय यहावे का आत्मा यिफ्ता पर उतरी। वह गिलाद एव मनशशे में से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके बाद वह मिज़्पा के लिए गिलाद में से होता हुआ वह अम्मोन वंशजों के क्षेत्र में जा पहुंचा। यिफ्ता ने यहावे के सामने यह शपथ ली, यदि आप वास्तव में अम्मोन वंशजों को मेरे अधीन कर देंगे, जब मैं अम्मोन वंशजों से सुरक्षित लौट आऊंगा, तब मेरे निवास के द्वारों में से जो कोई मुझसे भेंट करने बाहर आएगा वह यहावे का हो जाएगा, मैं उसे होम बलि के रूप में चढ़ा दूंगा। यिफ्ता ने आगे बढ़कर अम्मोन वंशजों पर हमला कर दिया। यहावे ने उन्हें उसके अधीन कर दिया। अरोवर से लेकर मिन्नीत के प्रवेश तक 20 नगरों में तथा आबेल केरामीन तक उसने घोर संहार किया। इस प्रकार अम्मोन वंशज इसराइल वंशजों के सामने हार गए। जब यिफ्ता अपने आवास मिज़्पा लौटा, उसने देखा कि उसकी पुत्री डफ बजाती हुई नाचती हुई उससे भेंट करने आ रही थी। वह यिफ्ता की इकलौती संतान थी। उसके अलावा उसके ना तो कोई पुत्र था ना कोई पुत्री। जैसे ही उसकी नज़र अपनी पुत्री पर पड़ी, उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और कहा, हाय मेरी पुत्री, तुमने तो मुझे खत्म ही कर दिया। तुम मेरे शोक का कारण हो गई हो। मैंने यहावे को वचन दिया है जिसे मैं मना नहीं कर सकता। यह सुन उसकी पुत्री ने यिफ्ता को उत्तर दिया, पिताजी, आपने शपथ यहावे से की है, मेरे साथ आप वही कीजिए जैसा आपने कहा है, क्योंकि यहावे ने आपके द्वारा अम्मोन वंशजों आपके शत्रुओं से बदला लिया है। उसने अपने पिता से यह भी कहा, जैसा आपने कहा है मेरे साथ वैसा ही किया जाए, सिर्फ मुझे 2 महीने के लिए अकेली छोड़ दिया जाए कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाकर अपने कुंवारी ही रह जाने के लिए रोऊंगी। जाओ, यिफ्ता ने कहा, और उसने 2 महीने के लिए अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वह चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारी रह जाने के लिए रोती रही। 2 महीने पूरे होने पर वह लौटी और यिफ्ता ने उसके विषय में अपनी शपथ पूरी की, किसी पुरुष से उसका संबंध ना हुआ था। इसराइल में इसकी याद में एक प्रथा प्रचलित हो गई। इसराइली कन्याएं हर साल गिलादवासी यिफ्ता की पुत्री की याद में 4 दिन विलाप करती हैं।